हैं कि हे महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है उस धर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा। अब सहदेव ने क्या कहा? सहदेव कहते हैं, हे महाराज, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें भी संदेह है। हाँ, अगर शरीर से संबंधित वस्तु को छोड़ दिया जाए तो भी संदेह है कि सफलता मिलेगी कि नहीं। बाहरी पदार्थों का त्याग करके सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है वो तो हमारे शत्रुओं को प्राप्त हो। क्या समझे? कि शरीर के सुख भोगों में आसक्त है और बाहरी पदार्थों को त्याग दिया, तो ये जो है ना, अच्छी बात नहीं है। ये तो शत्रुओं को प्राप्त हो ऐसा। किंतु ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है वो हमारे हितैषी मित्रों को प्राप्त हो। दो अक्षरों का नाम है मृत्यु। क्या? मम माने मेरा। दो अक्षरों का नाम है मृत्यु, मम, और तीन अक्षरों का नाम है अमृत, ना मम, मेरा नहीं, है ना। बस ये भाव मतलब होना चाहिए। मेरा नहीं का भाव है तो अमृत है, और मेरा का भाव है तो मृत्यु है। अमृत सनातन ब्रह्म है महाराज। यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होती। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीविका का नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन, वन में रहकर वहां के फल फूलों से जीविका चलाता हुआ भी जो द्रव्यों में ममता रखता है वह मौत के ही मुख में है। प्राणियों का बाहरी स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। तो ये बात कौन कह रहे हैं? सहदेव कह रहे हैं। ऐसा लगता तो है कि भाई मैं जो है मतलब बिल्कुल ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, है ना। लेकिन आंतरिक स्वरूप तो कुछ और ही है ना। उस पर गौर करना चाहिए। जो सबके भीतर विराजमान परमात्मा को देखते हैं वही महान भय से छुटकारा पाते हैं। फिर द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर महाराज से, क्या कहती हैं? महाराज, आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं आज के श्लोक में, नियतम कुरु कर्म तुम, नियत कर्म करो। क्योंकि दंड ना देने वाले क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड ना देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता अगर राजा दंड ना दे तो। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ ना दिखाएं। जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी करता है, दोनों बातें हैं। दान भी देता है और कर भी लेता है अवसर देख करके। शत्रुओं को भय दिखाता है और शरणागतों को निर्भय बनाता है। जो दुष्टों को दंड देता है और दीनों पर कृपा करता है वह राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको ये पृथ्वी ना तो शास्त्र सुनाने से मिली है, ना दान में मिली है, ना आपने किसी को समझा बुझाकर इसे हड़प लिया है, ना यज्ञ में प्राप्त किया है और ना भीख मांगकर ही पाया है। आपने तो शत्रुओं की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है, इसलिए आप इस पृथ्वी का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए। किसने कहा है? द्रौपदी ने कहा। फिर द्रौपदी और कह रही हैं, मैं सच कहती हूं आप संपूर्ण पृथ्वी पर, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजन आप मानधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी हैं, संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए पर्वत वन तथा द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए। उदास ना होइए, नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए। हाँ, तो ये तो द्रौपदी ने समझाया। अब अर्जुन ने क्या समझाया युधिष्ठिर को? अर्जुन ने कहा, महाराज जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूं। अब सुनिए, ये कौन बता रहे हैं? अर्जुन युधिष्ठिर से कह रहे हैं, एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता सवार हो गई, मूर्खता। वे धन संतान स्त्री रत्न और अग्निहोत्र का त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भूना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देखकर रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी ये प्रतिज्ञा और चेष्टा ये सब राजधर्म के विरुद्ध है। ये महान राज छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं तो इतने से अतिथि देवता ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे करोगे? हैं? मैं तो समझती हूं आपका ये सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों को त्यागा है इसलिए देवता अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। अच्छा नहीं है ये? आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हो गई। आपकी माता क्या हो गई? पुत्रहीना हो गई। और ये अभागिनी कौशल्या भी पतिहीना हो गई। ये जनक है जिनकी पत्नी कौशल्या है। कई जनक हो चुके हैं ना, जनकपुरी के जितने राजा हैं सब जनक कहलाते हैं। तो एक ऐसे भी राजा थे जनक जिनकी पत्नी थी कौशल्या। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप सभी प्राणियों के लिए प्याऊ के समान थे। प्याऊ मतलब पानी देने वाला। सभी आपके यहां अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे, किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? फिर भी चाहते तो हो, मुट्ठी भर चाहते हो, लेकिन चाहते तो हो, तो फिर त्याग का क्या मतलब? जरूरत तो अभी भी है आपको, है ना? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जो की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहां रही कि सब कुछ त्याग दिया, फिर कहां रहा? महाराज यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल सैया सवारी वस्त्र और आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इसलिए आप समझिए संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा ना रहे तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे होगा? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वो किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। फिर आपको कुछ जरूरत नहीं कि गृहस्थ आश्रम से आप दूसरे आश्रम में जाओ। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मुड़ मुड़ाकर गिरवी वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं, ये बहुत खराब बात है। लेकिन किस लिए? दान लेने के लिए या पेट पालने के लिए घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों को ही खोज, भोगों की ही खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर ना हुआ हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचाने वाले मथमुंडे अपने जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। मथमुंडे क्या है? मथमुंडे माथा मुड़ा लिया। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोगों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्म परायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उनको भी मोह हो गया। उन्हीं की भांति आप भी मोह में ना पड़िए। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। अब वहां पर एक तपस्वी हैं, देवस्थान नाम के तपस्वी हैं। वे भी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्तियुक्त वचन कहने आरंभ किए। आप कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आपने धर्मानुसार ये सारी पृथ्वी जीती है, इसे आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की चार सीढ़ियां हैं और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है, अतः आपको इन्हें क्रम से ही पार करना चाहिए। अभी आप बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं और कोई कोई ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। गृहस्थों का धन किस लिए होता है? यज्ञ करने के लिए होता है। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। पैसे का उपयोग अगर शरीर के सुख के लिए करते हैं या और भी दुरुपयोग करते हैं तो क्या दोष लगता है? भ्रूण हत्या, मतलब गर्भ हत्या, गर्भ हत्या का पाप लगता है। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि धन जो ना किस लिए होता है? यज्ञ करने के लिए होता है। और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है, अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। ये कौन कह रहा है? देवस्थान नाम के एक तपस्वी हैं, वो बोल रहे हैं। राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर के है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपने सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा का अपने अंतःकरण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मानता तो उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ये देवस्थान नाम के ऋषि बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं, राजन, आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें। भूपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे, प्रिय और अप्रिय में समान रहे, यज्ञ से बचे, उसी अन्न का सेवन करे, शास्त्र के रहस्य को जाने, दुष्टों का दमन करता रहे, साधुओं की रक्षा करे, प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे और अंत में पुत्र को राज लक्ष्मी सौंप कर वन में चला जाए। वहां भी वन के फल मूल आदि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करे। जो राजा इस प्रकार बर्ताव करता है वही धर्म को जानने वाला है, उसके एहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते थे, सत्य दान और तप में लगे रहते थे, दया आदि गुणों से संपन्न थे, काम क्रोध आदि दोषों से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे और गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध ठानते थे, ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। कौन कह रहे हैं? देवस्थान नाम के ऋषि बोल रहे हैं। हे राजन, आप धर्मज्ञ हैं। अच्छा, आप अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन आप धर्मज्ञ हैं, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही ये दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज आप छात्र धर्म का विचार कीजिए, क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर के है। तप और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म है, तपस्या त्याग ब्राह्मणों का धर्म है, क्षत्रिय को नहीं है। हाँ, दूसरे के धन से अपना निर्वाह करना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है ना। नियत कर्म करो, भगवान कहते नियत कर्म करो, क्षत्रिय का नियत कर्म करो, तो दूसरे के धर्म पर निर्वाह, दूसरे के धन से अपना जीवन निर्वाह करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। आप तो सब धर्मों को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं, तथा आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शत्रुओं को परास्त करके ये निष्कंटक राज्य आपने प्राप्त किया है, अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दान आदि का अनुष्ठान कीजिए। देखिए, इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय हो गया था। उसने पाप परायण 99 जातियों का वध किया है। इंद्र ने लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है, अतः जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक ना करो। वे सब वीर तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं। अर्जुन बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं इसमें, कि 99 जातियों का वध किया है और उनका कर्म प्रशंसनीय माना जाता है, तो क्षत्रिय राजा थे है? तो पाप, जो पापी जातियां हैं उनको नष्ट करने में राजा को पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद व्यास जी युधिष्ठिर को समझाते हैं। व्यास जी कहते हैं, धर्मज्ञ तुम शास्त्रानुसार सुधर्म का ही आचरण करो, तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है, इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो। राजन तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियों का संयम, ध्यान, एकांत सेवन, संतोष और शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्धि देने वाली हैं, ब्राह्मणों के लिए होती हैं ये चीजें। क्षत्रियों के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो तो भी मैं उन्हें सुनाता हूं। क्षत्रियों का धर्म क्या है? यज्ञ, विद्या, अभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राज लक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट ना होना। क्षत्रिय संतुष्ट नहीं होता है कि मुझे इतना धन प्राप्त हो गया है। दंड देना, दबा रखना, अपना दबदबा रखता है वो। प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तपस्या, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्र को दान देना, क्षत्रिय के ये सब कर्म उसे इहलोक और परलोक दोनों में ही सफलता देने वाले हैं। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? व्यास जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से। हाँ, इनमें भी दंड धारण करना उसका सबसे प्रधान धर्म है, इसके लिए उसमें सर्वदा बल होना चाहिए, क्योंकि दंड विधान बल के द्वारा ही हो सकता है। राजन, क्षत्रियों को तो इन्हीं धर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस तरह से हमने चर्चा की है, और बहुत अच्छी चर्चा जो कि महाभारत में प्राप्त होती है, युधिष्ठिर महाराज कैसे तर्क देते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के तर्क के विरुद्ध सहदेव ने भी बहुत कुछ कहा, नकुल ने बहुत कुछ कहा, अर्जुन ने बहुत कुछ कहा, देवस्थान नाम के ऋषि ने कहा, और द्रौपदी ने कहा, और व्यास जी ने कहा, कितना अच्छा ये सब जो है विषय है। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही, तो इनका प्रश्न है कि कैसी स्थिति में संन्यास का अनुमोदन होता है? तो प्रभुपाद बताते हैं कि हृदय क्रमशः विमल होता है, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तब कोई व्यक्ति संन्यास ले सकता है। अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाए और भौतिक कामनाएं बिल्कुल ना रहें, तब कोई व्यक्ति संन्यास ले सकता है। तो पांचवें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोग्यतः, मतलब बिना भक्ति के संन्यास प्राप्त होना बहुत कठिन है। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, फिर कोई व्यक्ति संन्यास ले या ना ले वो संन्यासी है। चौथे अध्याय में बहुत श्लोकों में बतलाते हैं यज्ञ कर्म, ठीक है ना? तो बहुत विस्तार से यज्ञों की व्याख्या है, भगवान ने बतलाई है। तो इसमें एक यज्ञ ये भी है, जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है, ठीक है ना? कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्षति प्रत्यहम, नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम कोटि तीर्थ समुद्भवम, जो कलयुग में प्रतिदिन कृष्ण 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 इस प्रकार कहेगा उसको 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होगा और करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा उसको, है ना? तो कृष्ण का नाम भी बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि भगवान विष्णु को भी यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ स्वरूप है भगवान। फिर गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। हाँ, इनका प्रश्न है कि व्यास जी ने क्षत्रिय धर्म क्या बतलाया है? भगवान गीता में भी कहते हैं, शौर्यम तेजो धृतराक्षम युद्धे चापे पलायनम दानम ईश्वर भाव से छात्रम कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म क्या है? शौर्यम तेजो धृतराक्षम, शौर्य शूरता, तेज है ना, मतलब दबना नहीं किसी से, तेज तेज, शौर्यम तेजो धृतिर धैर्य धारण करना, दाक्षम चतुरता कर्म कुशलता, युद्धे चापे पलायनम और युद्ध में ना भागने का स्वभाव है ना, दानम और दान देना, ईश्वर भावस्चा और रक्षा करने का भाव, कोई असहाय होता है तो क्षत्रिय उसकी रक्षा करता है, तो रक्षा करने का भाव भी उसके अंदर होता है। तो ये स्वाभाविक क्षत्रियों के गुण बताए गए हैं, ठीक है ना? अब शांति पर्व में युधिष्ठिर महाराज ने जो भीष्म जी से प्रश्न किया कि किस प्रकार का आचरण करने से क्षत्रिय राजा इस लोक और परलोक में सुखी हो सकता है, तो भीष्म जी ने 36 गुण बतलाए हैं जिनके द्वारा जो क्षत्रिय राजा हैं वो सुखी होते हैं। तो पहला क्या है? धर्म का आचरण करना चाहिए लेकिन कटुता नहीं आने देना चाहिए। दूसरा है, आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा है, क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करना चाहिए। चौथा है, मर्यादा का अतिक्रमण ना करते हुए ही विषयों को भोगना चाहिए। पांचवा है, दीनता ना लाते हुए ही प्रिय भाषण करना चाहिए। छठवां, शूरवीर बनना चाहिए किंतु बढ़ बढ़कर बातें नहीं बनाना चाहिए। सातवां है, दान देना चाहिए परंतु अपात्र को यानी गलत व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। आठवां है स्पष्ट व्यवहार करना चाहिए परंतु कठोरता नहीं आने देना चाहिए। नवा है दुष्टों के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। दसवां है बंधुओं से कलह नहीं ठानना चाहिए। ग्यारहवां है जो राजा का भक्त नहीं है ऐसे दूत से कभी काम नहीं लेना चाहिए। बारहवां है किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करना चाहिए। तेरहवां है दुष्टों से अपनी बात नहीं कहना चाहिए। चौदहवां अपने गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। पंद्रहवां है साधुओं का धन नहीं छीनना चाहिए। सोलहवां है नीचों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। सत्रहवां है अच्छी तरह जांच किए बिना दंड नहीं देना चाहिए। अठारहवां गुप्त मंत्रणा को प्रकट नहीं करना चाहिए। उन्नीसवां लोभियों को धन नहीं देना चाहिए। बीसवां जिन्होंने कभी अपकार किया है उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इक्कीसवां है किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए। बाईसवां शुद्ध रहना चाहिए और किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। तेईसवां स्त्रियों का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। चौबीसवां स्वादिष्ट होने पर भी जो अहितकर है उसे नहीं खाना चाहिए। पच्चीसवां निराभिमान होकर माननीयों का आदर करना चाहिए। छब्बीसवां गुरु की सेवा करना चाहिए निष्कपट भाव से। सत्ताईसवां दंभ से रहित होकर के देव पूजन करना चाहिए। अट्ठाईसवां आनंदित उपाय से धन प्राप्त करने की इच्छा रखना चाहिए। उनतीसवां स्नेह पूर्वक बड़ों की सेवा करना चाहिए। तीसवां कार्य कुशल होना चाहिए किंतु अवसर का विचार रखना चाहिए। इकतीसवां केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना चाहिए। बत्तीसवां किसी पर कृपा करते समय आक्षेप नहीं करना चाहिए। तैतीसवां बिना जाने किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। चौतीसवां शत्रुओं को मारकर शोक नहीं करना चाहिए। पैंतीसवां अकस्मात क्रोध नहीं करना चाहिए। छत्तीसवां जिन्होंने अपना अपकार किया हो उनके प्रति कोमलता का बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन यदि अपना हित चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर इसी प्रकार व्यवहार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे। जो राजा इन सब गुणों का अनुवर्तन करता है वह इस लोक में सुख पाता है और मरने पर भी उत्तम गति प्राप्त करता है। आगे भीष्म जी कहते हैं कि जब घर पर शास्त्रों के ज्ञाता धर्मिष्ठ ब्राह्मण पधारे उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका स्वागत करो, बैठने को आसन दो, उनकी विधिवत पूजा करके चरणों में प्रणाम करो। इसके बाद पुरोहित की सलाह से और सब राज कार्य किया करो। धार्मिक और मांगलिक कार्यों को पूर्ण करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराओ और अपने अभीष्ट की सिद्धि एवं विजय के लिए उनके मुख से आशीर्वाद लो। राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव होकर धैर्य और बुद्धि के बल से सत्य का आश्रय ले और काम क्रोध का परित्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है वह मूर्ख धर्म को तो छोड़ बैठता है और धन भी उसके हाथ नहीं लगता। और फिर भीष्म जी ने कहा जैसे माली वृक्षों को सींच सींच कर बढ़ाता है उसी प्रकार तुम्हें भी प्रजा को उन्नतिशील बनाना चाहिए। फिर भीष्म जी ने इधर से कहा तुम अत्यंत कंगाल क्यों ना हो जाओ फिर भी ब्राह्मण को धनवान देखकर उससे धन लेने की इच्छा नहीं करना। ब्राह्मण को यथाशक्ति धन और आश्वासन देने और उसकी रक्षा करने से ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर सकोगे। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। संपूर्ण प्राणियों पर दया और उनकी रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राजा रक्षा कार्य में नियुक्त होकर सब पर दया करता है, इसीलिए धर्मज्ञ पुरुषों की दृष्टि में वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराश्रीमद भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के श्री श्री गोंडताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
जय जय जय
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधा पार्थ सखी
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे